اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسرع بعبده لیلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. یہ قرآن کی ایک سورہ اسرع کی پہلی آیتی ہے، بڑے ہی اہم موضوع کی طرف اشارہ ہے. اور آج کیونکہ یہاں فلسطین کا موضوع اور جو بھی موجودہ حالات ہیں اس پر گفتگو ہونی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم اس کی تاریخی حیثیت کو سمجھیں، اس کی تاریخی اہمیت کو سمجھیں، اور اس کے بعد بہت سارے شکوک و شبہات کے جو خصوصاً تشیعوں میں موضوع فلسطین یا بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہماری جو کوششیں، اس پر جو تنقید ہوتی ہے، کچھ اس کے اوپر انشاءاللہ روشنی ڈالیں، اور پھر تیزی سے اپنے موجودہ زمانے کے جو حالات ہیں، یعنی تین مرحلوں میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ 40-45 منٹ کی گفتگو مکمل کریں. درود پڑھے محمد والے محمد. اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں، ضروری ہے کہ ایک سورہ فاتحہ ہم پڑھیں. تمام شہداء اسلام، خصوصاً جو شہداء ابھی اس حادثے کے ہیں، اور وہ بچیاں افغانستان میں، کابل میں، مدرسہ سید الشہداء میں جو بچیاں شہید ہوئی ہیں، ان سب کو یاد رکھتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس مختصر سی آیت کو ہم نے پڑھا، سبحان الذی اسرا بعبدن، یہ خطاب سورہ اسرا خود، یہ مکی آیت، مکی سورہ ہے، یعنی یہ مدنی سورہ نہیں ہے، یہ مکے کی سورہ ہے. مکے کی سورہ، اندازہ ہے آپ کو کہ مکے کی سورہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی رسول اللہ نے ہجرت نہیں کی ہے، ابھی ہم مکی زندگی میں ہیں کہ جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. وہاں معراج پر جاتے ہوئے جو آپ کو سفر کروایا گیا ہے، معراج آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی مکے میں رونما ہوئی ہے، جو سفر آپ کو کروایا گیا ہے وہ اس سورہ میں بیان ہوا ہے، سورہ اسرا میں، کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلن. کہتے ہیں کیا بات ہے اس خدا کی، سبحان اللہ، اللہ کی، کہ جس نے سفر کروایا، سیر کروائی، اسرا ہے بھی اسی نام پہ، سیر کروائی عبدن، اپنے بندے کو، لیلن، ایک ہی رات میں، ایک ہی وقت. یعنی آپ کو اندازہ ہے معراج کا کہ لوگ یہ تک کہتے رہے کنڈی اگر ہل رہی تھی تو وہ ہلتی ہی رہی، یعنی مراد یہ ہے کہ اس قدر طولانی سفر تھا، لیکن ہوا کچھ ایک آدھ، یعنی کچھ ایسے لمحوں میں کہ دنیاوی اعتبار سے اس وقت کا پتہ نہیں چلتا. لیلن من المسجد الحرام، یہ لیل عبد سفر کروایا، کہاں سیر کروائی ہے، مسجد الحرام سے لے کر الی مسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد حرام، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بن رہی ہے، یعنی مکے میں بنی ہے، اور یہ مسجد اقصی کی بات ہو رہی ہے جو سرزمین کی فلسطین پر، یعنی سرزمین فلسطین کے اوپر ہے. من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی وبارکنا حولہ، اور ہم نے اس کے اطراف کو بھی بابرکت قرار دیا ہے. یہ وہ قرآن کی آیت ہے جو میں آپ سامنے پڑھی ہے. جو ایک بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مسجد اقصیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کر رہا ہے، اور ابھی رسول اللہ کا اسلام مدینے میں بھی نہیں پہنچا ہے، ابھی ہم مکے کی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی ہم مدینے کا سفر نہیں کیا ہم نے، دوسرے لفظوں میں ہم سفر ہی نہیں کیا ہے، ابھی تو ہم یہیں پر ہیں، تبلیغات ہماری یہیں چل رہی ہیں، ایک سفر ملتا ہے وہ بھی طائف کا. تو یہ آپ نہ مسلمان گئے، نہ آپ کے مبلغ گئے، نہ ابھی آپ خود گئے، تو یہ مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ مساجد یہ رسول اللہ کے اسلام یا دین سے مختص نہیں ہیں. مساجد تمام انبیاء کی عبادت گاہوں کو مسجد کہا جاتا ہے، اور یہی مسجد ہے جو آج آپ کے پاس موجود ہے، یہی مسجد ہے. تو فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا آپ کو سفر کروایا جا رہا ہے، कब करवाया जा रहा है? जब आप मक्की ज़िंदगी में हैं, आप अभी मदीने भी नहीं गए, अभी आपके मुबल्लिग कहीं नहीं गए, आपका काम अभी स्टार्ट में है और आपको मस्जिद अक्सा का सफ़र करवाया गया। ये जो बैतुल मुक़द्दस है ना, जो आप देखते हैं कि गुंबद है येलो और उसके नीचे एक इमारत नज़र आती है, और हम सब मस्जिद अक्सा के बजाय ज़्यादातर बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी की बात कर रहे हैं। ये मुक़द्दस जगह है, ये भी हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की, या कम से कम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बनाई हुई जगह है। इसमें कहते हैं हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की कब्र है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कब्र है, यानी दो कब्रें कही जाती हैं जो इसके अंदर हैं, जिसको आप मुक़द्दस मुकाम के तौर पर हमेशा देख रहे होते हैं, जिसे बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है। लेकिन असल मसला बैतुल मुक़द्दस का नहीं है, ना वो इसको गुराएंगे, ना वो इससे उनका कोई झगड़ा है, क्योंकि उनको ये मालूम है कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह की कब्र है, यहाँ पर तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा अगर वो इसको गिराते हैं। वो इसको गिराएंगे नहीं, वो मस्जिद अक्सा पर हमला करते हैं। मस्जिद अक्सा के अहाते में ये जगह है, मस्जिद अक्सा ही के अहाते में, जो बहुत बड़ी किस ज़माने की मस्जिद थी, जो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने छोटा कर दिया। इलाके का नाम भी बैतुल मुक़द्दस है, शहर का नाम भी बैतुल मुक़द्दस है, इन्होंने उसको छोटा करते करते जाना, वो मस्जिद अक्सा का बहुत ही आप इस तरह से हुआ कि यहूदी आबादियाँ बात करने के लिए इन्होंने गिराई है चारों तरफ से मस्जिद, आग लगा लगा के इन्होंने कमज़ोर किया है। पहली मरतबा 1967 में आग लगाई है, बैतुल मुक़द्दस को नहीं लगाई है, इन्होंने मस्जिद अक्सा को आग लगाई है, जिसकी वजह से खुमैनी बुशकन ने, अभी इनकलाब भी नहीं आया था, 1979 में इनकलाब आया है, 67 में इमाम जो हैं ये मुल्क बदरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस वक्त उन्होंने क़याम किया पहली मरतबा इमाम खुमैनी ने इस मस्जिद के लिए, कहा कि ये बड़ी मुक़द्दस मस्जिद है, ये हमारी मस्जिद है, ये मस्जिद मुसलमानों की मस्जिद है, ये इसराइली यहाँ पर ला के आबाद किए गए हैं, यहूदी जिनको आप कहते हैं, और उसके बाद वो चाहते हैं बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा करें, उन्हें सारा उनके हाथ में आए। तो पहली बात क्या हो गई, वो ये हो गई कि ये मुक़द्दस मुकाम हमारा मस्जिद के उनवान से नया नहीं है, इस्लाम के बाद का नहीं है, ये पहले से बनी हुई जगह थी। एक बात तारीखी, दूसरी बात जो तारीखी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब तक रसूलुल्लाह मक्के की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उस वक्त तक खाने काबा की तरफ ही रुक करके नमाज़ पढ़ते थे, जब मक्के में थे खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते थे, बहुत कम लोग थे मुसलमान, अभी कम लोग हुए हैं, पता है आपको मक्की ज़िंदगी में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है, और इतना प्रेशर और इतना ज़ोर और इतना जुल्म हुआ कि वो बेचारे भी हिजरत कर गए, दो बड़ी हिजरतें हुई हैं आप जानते हैं, ये नज्जाशी ने इनको पनाह दी है, उस तरफ चले गए थे ये, तो जो रह गए थे वो नमाज़ पढ़ते थे, क़िबला रुख हमारा उस वक्त मक्के में था और वो खाने काबा था जब रसूलुल्लाह मक्की ज़िंदगी में। लेकिन जैसे ही मदीने में पहुँचे, अभी मस्जिद नहीं बनी है, मस्जिद हराम जो बनानी तो मस्जिद नबवी, तो यहाँ पर फिर रसूलुल्लाह को कहा गया कि आपने बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़नी है, यानी स्टार्ट हुआ है तो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं खाने काबा की तरफ, लेकिन जब हम मदनी ज़िंदगी में आते हैं तो हमें नमाज़ पढ़नी है बैतुल मुक़द्दस की तरफ, इसलिए आपने इसको क़िबला के नाम से सुना। ये अलग बात है इसको क़िबला अव्वल कह रहे हैं, है नहीं क़िबला अव्वल, क़िबला अव्वल हमारा खाने काबा है, या क़िबला दोवम फिर हमारा क़िबला अव्वल है, यानी हमने यूँ तीन मरतबा, और इसमें आपको पता है कि फिर आयत आई, आयत आने के बाद ये कहा गया कि अब अपना रुख मोड़ लीजिए। इसको वैसे समझने की ज़रूरत है ये क्यों हुआ, चाहे हमने मुख्तसरी ज़िंदगी गुजारी मदीने में, लेकिन हमें क्यों कहा बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ें, मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ें, ये भी क्यों कहा गया। इसके ऊपर भी दो दलाइल हैं, एक तो ये कि खुदा इम्तिहान लेता है, ये जो तब्दीलियाँ आती हैं ना इस तरह की, सुलह हुदैबिया में बड़ा मसला हुआ था, सुलह हुदैबिया में रसूलुल्लाह ने लोगों को तैयारी करवाई थी, चलो हुदैबिया से पहले यानी सुलह से पहले कि चलो और आज हमने हज करना है, ये छठा हिजरी का साल था, ये हिजरी का छठा साल है, हिजरत का छठा साल है, और जब पहुँचे तो वहाँ पर पता चला है कि वो लोग सुलह करना चाहते हैं, सुलह हुदैबिया हो रही थी, मुसलमान यहाँ पे जो है ना रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं, मुसलमान रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू कर देते हैं, आप तो हम आए थे लेके जाएंगे, हमें तो हज करवाएंगे, आपने वादा दिया था हमको, और अब आप कह रहे हैं अहराम उतार दो, हरम अब नहीं जाना, हमने हरम दाखिल नहीं हो सकेंगे, हमने सुलह कर ली है। तो ये जो आजमाइश होती है ना, ये तब्दीलियाँ खुदा को मालूम होती हैं ये होनी है, लेकिन ये आजमाइश होती है कि आप कितनी अतात कर रहे हैं अपने रसूल की, ये अतात का मसला है असल में, कि आप मुती हैं या नहीं है, या तब्दीलियों से जो आपके अंदर भी तब्दीलियाँ आने लगती हैं। हमें तो असल में समझ में आया है कि जो अतात है ना ये वाजिब है, नतीजा गलत हुआ सही हुआ, आज ये क्यों किया कल ये क्यों किया, अगर रहबरान करते हैं हमारे शख्सियात करती हैं लीडर्स करते हैं, तो ये सब इम्तिहान ही होता है। जो बहरहाल फिर हो गया कि पहले कहा मक्का, फिर कहा मदीने के अंदर आपने नमाज़ पढ़नी बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और फिर कहा कि नहीं हमने नमाज़ जो है वो पढ़नी है खाने काबा की तरफ। अब ये इम्पॉर्टेंस दूसरी अहमियत हो गई है। एक दलील ये दी जाती है जो मैंने आपको दी इम्तिहानात, एक और दलील भी दी जाती है, वो ये थी कि जो मदीना था ना, आपको मालूम है कि यहाँ पर जो पावर थी मदीने के अंदर, जो पावर, पढ़े लिखे लोग, बिजनेस जिसके जिनके हाथ में था, वो असल में यहूदी था, वो असल में यहूदी था। यहूदी इतना पावरफुल था कि यहाँ के लोग जुरत नहीं कर सकते थे यहूदियों के ख़िलाफ़ बात करने की। कब पता चलता है आपको? आपको उस वक्त पता चला जंग खंदक हुई, जंग खंदक के अंदर जो है वो यहूदियों ने, यानी इन्हीं तीन कबीलों ने जो रहते थे मदीने में, खयानत की। खयानत के नतीजे में पता भी चल गया कि इन्होंने खंदक में खयानत की है, पता चल गया रसूल खुदा को। उन्होंने एक बड़े बुज़ुर्ग सहाबी से कहा कि आप फ़ैसला कीजिए, मैं फ़ैसला नहीं करता, आप फ़ैसला कीजिए कि क्या करना चाहिए इन लोगों के लिए कि जिन्होंने खयानत की है। और खयानत या बगावत उस ज़माने में मतलब ये था कि इस्लाम को लपेट देते अगर कामयाब हो जाते तो वो सहाबी कहने लगे कि गर्दन उड़ाएं, इनके मर्दों की गर्दन उड़ा दें, इनकी औरतों को छोड़ दें। बहरहाल तो रसूल खुदा ने एक कबीले को छोड़ के, जिनको कहा कि इनकी ख़वातीन को लेके जाओ, दो कबीलों की गर्दन उड़वाई। अब जब वो उड़ाने का मरला था ना, ये गर्दन काटनी है, काटने से मुराद ये है कि धड़ गिरेगा एक गढ़े में और सर गिरेगा एक गढ़े में। तो पूछा रसूल खुदा ने कई मरतबा, हाँ भाई कौन करेगा ये काम? सारे मुसलमान बैठे हुए थे, मदनी ज़िंदगी है, यहाँ पर आप पावरफुल हैं, आप तीन बड़ी जंगें जीत चुके हैं उससे पहले, या दो कम से कम जीत चुके थे आप, ओहद भी किसी हद तक और बदर तो यकीनी तौर पर जीते थे आप, और खंदक आपने जीत ली थी, उमर इब्न अब्दुत को मारा हुआ था, ताकत आपकी बहुत थी इस वक्त, आपने सारे कबाइल अहज़ाब की जंग में अल्हम्दुलिल्लाह फतह पाई थी। होना तो चाहिए था कि मुसलमान आते और कहते कि हम इनकी गर्दन उड़ाएंगे, लेकिन वहाँ मुसलमान इनकी गर्दन उड़ाने के लिए नहीं आया। और फिर मौलाए कायनात आए, मौलाए कायनात ने कहा कि काम मैं ही करूँगा, मुझे ही दीजिए। और इमाम ने सारे यहूदियों की गर्दन अकेले उड़ाई है, सारे यहूदियों की गर्दन अकेले, ये मौजूद है तारीख के अंदर। तो मैं दलील दे रहा हूँ कि क्यों कुछ अरसे के लिए बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज़ पढ़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब मदीने में आए तो यहाँ पर यहाँ का ताज़ा मुसलमान भी प्रेशर में था यहूदियों के, और ख़ुद यहूदी बहुत ताकतवर था, और फौरन ही कोई बड़ी बगावत ना हो जाए, कुछ अरसे के लिए रसूलुल्लाह से कहा गया कि आप भी इस तरफ ही रुख करके नमाज़ पढ़ ली जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस है, जिसकी वजह से फिर उसका आपको क़िबला, यानी हमारा क़िबला मारूफ हो गया कि ये क़िबला भी है। ये दो बातें तारीखी हो गई। अब तीसरी तारीख की तरफ आइए, वो ये है कि बनी इसराइल ने इनको जब ये ट्रेनिंग दे दी थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, आपको मालूम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें 30-40 साल रखा है, जब समंदर क्रॉस करवा के लेके गए, अफ्रॉन डूब गया, 40 साल कम से ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल कहा जाता है, वो दौरानिया है कि जब इनकी ट्रेनिंग की गई है। और वही मैं कहता हूँ कि ट्रेनिंग अभी तक इन यहूदियों के पास मौजूद है ना, इनकी तौरात सारी की सारी तहरीफ शुदा है, ना इनकी इंजील सारी की सारी तहरीफ शुदा है। एक किताब असली तौरात मौजूद है इनके पास, इंजील भी इनके पास मौजूद है, तलमूद भी इनके पास मौजूद है, और इनके पास वो ट्रेनिंग से सारे डॉक्यूमेंट भी मौजूद हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सहरा में करवाई थी, जिसको आप सहरा सीना कहते हैं, जिसके बाद जब आमादगी हो गई तो आप कहा कि आओ दाखिल होते हैं, जो मुकद्दस सरजमीन का तुमसे वादा किया गया था, चलते हैं और चल के उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जा रहे, वहाँ पर तो बड़ी मारूफ मजबूत कौमें रहती हैं, कुरान की आयात हैं, हम वहाँ नहीं जा रहे, जाएँ आप और आपका खुदा, इज़हब अंत व रब्बुक, तुम और तुम्हारा खुदा जाओ, मूसा से कह रहे हैं, और लड़ो, फ़कातला नहनु हाहुना क़ायदून, हम तो यहाँ बैठे हैं दीवार के साए में, दरख्त के साए में, हमने नहीं जाना, आप जाइए, जाके आपका खुदा लड़िए। सारी ट्रेनिंग इनकी इनके पास मौजूद थी और उन्होंने मूसा का साथ नहीं दिया, मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि ठीक है जहन्नुम में जाओ, इसी सहरा के अंदर भटकते रहोगे और मैं जा रहा हूँ, और वो चले गए। और आज तक मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ पर हैं किसी यहूदी को नहीं पता, जो बड़ा तरक्की याफ्ता यहूदी है इस वक्त दुनिया के अंदर अपने आप को कहता है। अगर ये आपको ज़्यादा तंग करें, आप पूछेंगे बताओ कि हज़रत मूसा कहाँ हैं, वो मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ हैं कि जो तुम जिनका दावा करते हो कि तुम उनके मानने वाले हो, तुम सारे सारे मूसवी हो, यानी दूसरे लफ्ज़ों में तुम यहूदी हज़रत मूसा के पैरोकार हो, कहाँ हैं हज़रत मूसा? ना इन्हें हज़रत मूसा का पता, ना इन्हें हज़रत हारून का पता है। दो शख्सियात चले गई, 40 साल तक भटकते रहे, पूरी नस्ल ख़त्म हो गई, वो नस्ल के जिसने बगावत की थी, वो नस्ल जिसने नबी की बात नहीं मानी थी, नई नस्ल आ गई, यूशा बिन नून एक नबी आए, और फिर यूशा बिन नून इनको लेके दाखिल हुए सरजमीन पे। अब वो जो खुदा ने इनके ज़रिए से पहले मरहले में फ़लस्तीन और शाम के इलाके के अंदर हुकूमत का क़याम, और फिर अल्लाह का निज़ाम यानी अल्लाह की आलमी हुकूमत का क़याम इनके ज़रिए से जो तय पाया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी दे चुके थे इनको, और खुसूसन जो नेमतें इनको मिल रही थी वो भी अंदाज़ा ही हो रहा था कि आपके साथ लाडली कौम है आप अल्लाह की, जो कुछ आपके साथ हो रहा है कभी किसी के साथ नहीं हुआ, और ना बाद में होगा जो इनके साथ हुआ था। लेकिन जब इन्होंने मूसा की बात नहीं मानी, फिर यही कुरान कि जो अभी तक इनकी तारीफ़ कर रहा था, फिर कहता है तुम्हारे लिए ज़िल्लत लिख दी गई है कुरान की आयात, मस्कना, हमेशा जलील व ख़्वार होते रहोगे, तुम्हें हर जगह से निकाल दिया जाएगा, तुम अल्लाह के इंतकाम का निशाना बनोगे, सारे कुरान की आयात हैं, और इन पर लानत भेजी गई। और उसके बाद फिर पूरा प्रोग्राम भारी हो जाता है जुमला कहना कि प्रोग्राम ही बदल गया, लेकिन बात इसी तरह से है, बात इसी तरह से है कि एक बार आजमाइश होने के बाद एक कौम को हमारे लिए व्रत बना दिया गया, कहा कि देख लो भाई, अगर तुम बनी इस्माइल, हुसैन शिया और सादात जो बनी इस्माइल कहलाते हैं, अगर तुम भी बनी इसराइल बनने की कोशिश करोगे तो यही तुम्हारे साथ भी होगा। ये व्रत के तौर पर हमारे सामने आ गया। कुरान ने इसलिए इनको 900 आयात में पेश किया है। बनी इसराइल के वाकये को कुरान ने 900 आयात में पेश किया है। कुरान का अगर हम कहें तो 1/6 से थोड़ा सा कम, यानी इनके ऊपर है, छठा हिस्सा कुरान का इनके ऊपर है। बनी इसराइल, हज़रत मूसा 128 मरतबा नाम लिया जाता है उनका, 128 मरतबा, आपके नबी का 5 मरतबा और मूसा का 128 मरतबा। यानी क्यों? क्योंकि ये इबरत है। अब इसमें बहुत कुछ है साहिबान अक्ल के लिए, अगर वो इस्तेमाल करें, अब बहुत कुछ है इसमें जो बनी इसराइल ने किया है कौम के साथ। अच्छा जी, तीन बातें बात तारीखी हो गई, अब आप चौथी बात की तरफ आ जाइए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो ये होता है कि इन्होंने ये तय कर लिया कि अब हमने जो है ना, मूसा ने हमको वादा दिया हुआ है, ट्रेनिंग हमारे पास है, अब हम आलमी हुकूमत का क़याम करेंगे। उस वक्त से प्लानिंग शुरू कर दिया और सारे इलाकों को देखना शुरू कर दिया। और उनके बाद पता चल गई कि जो इस इलाके पर काबिज़ होगा, जिसे अंबिया की सरजमीन कहा जाता था पुराने ज़माने में, मिडिल ईस्ट कहा जाता है आपके ज़माने में, ये अंबियाई सरजमीन है, ये अंबिया की सरजमीन है, यानी ये इराक, यानी ये शाम, यानी ये लेबनान, यानी ये मिस्र और ये उर्दन, ये इलाका शामात कहलाता था पहले, शामात, ये शामात, यही अंबिया की सरजमीन है। आपको इधर उधर इक्का दुक्का ही मिलेंगे अंबिया, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे इक्का दुक्का, जैसे खुद मदीने में या मक्के में ये इक्का दुक्का वाले अंबिया हैं, वरना सारे अंबिया तो सरजमीन पर थे। और इन्हें पता चल गया था अहमियत सरजमीन की, कि जिसने इस इलाके पर अपनी हुकूमत बना ली और मजबूत हो गया, वही आलमी हुकूमत बनाएगा। ये इनको भी पता था और यही आपको भी पता है। अहादीस के अंदर आपके यहाँ क्या आया हुआ था? आपके यहाँ आया हुआ है कि जब आपके आखिरी इमाम आएंगे इंशाअल्लाह, और जब वो खाने काबा में आ जाएंगे, ज़हूर हो जाएगा और वो नमाज़ पढ़ा देंगे और ऐलान हो जाएगा कि हम आ गए हैं, और वो जो इंशाअल्लाह इनके फॉलोवर्स हैं, जो खुरासानी इंशाअल्लाह एक तरफ और यमनी दूसरी तरफ, वो सब हरकत यानी हिजरत शुरू कर देंगे, इनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, आपको ये सब रास्ते में मिलेंगे, और फिर आप जो है वो अपना कैपिटल बनाएंगे कूफे को, अपनी फैमिली को रखेंगे सामर्रा में, कूफे की मस्जिद में आपने कैपिटल बनाया, मस्जिद सामर्रा में अपनी फैमिली को रखा, और फिर उसके बाद आपका सफ़र शुरू हो गया फ़लस्तीन की सरजमीन की तरफ। यहाँ पर दुश्मन का काफिला आ रहा होगा जो धंस जाएगा, ये सब आपने बातें सुनी हुई हैं, वो सऊदीया से निकले, कहीं से भी निकलेगा वो धंस जाएगा, हो सकता है वो पूरा यहूदी हो जो धंस जाएगा, और फिर सूफियानी साहब की जंग शुरू हो जाएगी। कहाँ हो रही है सरजमीन, आखिरी जंग कहाँ हो रही है? आपकी तारीखों में भी इसी सरजमीन पर आ रही है कि वो जंग इसी सरजमीन पर हो रही है, जिसको उन्होंने आर्मागेडून कह दिया, आर्मागेडून कह दिया, ये भी तारीख के अंदर मौजूद है। और उसकी भी थ्योरी अगर आप पढ़ना चाहें तो सर्च इंजन आपके हाथों में पढ़ लीजिएगा कि यही वो भी तैयारी कर रहे हैं कि हज़रत ईसा ने भी यहीं पर आना है। वो हज़रत ईसा के लिए इस्तेमाल नहीं करते, वो ये कहते हैं कि जो हमारा निजात दहिंदा आएगा वो भी यहीं पर आने वाला है इसी सरजमीन के ऊपर। अब वो कभी कभी दज्जाल को भी इशारा दे देते हैं, अब सूफियानी की तरफ वो नहीं जाते, लेकिन दज्जाल और इस तरह की वो भी तैयारियां कर रहे हैं कि वो भी यहीं आना है, जिसने आगे मुकाबला करना है उनका, कि जो अल्लाह के निज़ाम को कायम नहीं होने देंगे। और वो भी यानी हम पर यही ब्लेम लगाते हैं कि जैसे शिया जो है वो अपनी हुकूमत के चक्कर में है, वो आ रहा है, बढ़ रहा है। इसको फिर आपके मौजूदा ज़माने में मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा, उसने भी बाकायदा इस बात को इजहार किया अपने इंटरव्यू के अंदर, यही मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त मौजूदा, कि यहाँ इनकी तारीखों में रिवायात में लिखा हुआ है कि मक्के में आना है उस शख्सियत को, तो मैं मुकाबला करूँगा, तो मैं तैयार हो रहा हूँ, तो फ़लाँ फ़लाँ, ये वो सारी बातें इसीलिए करता है कि उसको भी इस बात का इल्म। और ये बात इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी तारीख को और आपकी रिवायात को आपसे ज़्यादा उन्होंने पढ़ा है, वो ज़्यादा इस पर मेहनत कर रहे हैं, हम इतनी नहीं कर रहे। आप आखिरी 10 सालों की अगर फिल्में उठा के देख लेना, सिर्फ जो हॉलीवुड ने बनाई हैं, तो आपको पता चल जाएगा एंड ऑफ हिस्ट्री के नाम से दुनिया अंजाम तक पहुँच रही है, अब निज़ाम कोई नहीं बचेगा, अब बस यही जो है यहाँ पर आगे दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये सब इस पर फिल्में। और आखिरी निजात दहिंदा भी आने वाला है, और वो अमूमन अमरीका होता है, जो घूम फिर कर जाना, वो कभी आसमानी बलाओं से कोई पत्थर आ रहा होता है, कभी कोई बला आ गई, किसी ने इंजेक्शन लगा के कोई बला बन गई है, कभी कोई कभी कुछ, हर तरह से आपको बचा रहे हैं, यानी अमेरिकन आ रहे हैं एंड में आपको आगे निजात दे देते हैं। तो वो भी इसी यानी इसी नज़रिए पे काम करके अपने आप को निजात दहिंदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गई चौथी बात कि आलमी हुकूमत के क़याम के लिए उन्होंने जो प्लानिंग की है, इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, अंबिया की ट्रेनिंग्स इनके पास मौजूद थी और इन्होंने उसको महफूज भी रखा है, और उस महफूज रखा है तो आज दुनिया इनके हाथ में। मैं अभी 7 चीज़ें अमूमन गिनवाता हूँ, फिर बार गिनवा देता हूँ, 6 या 7 चीज़ें अगर याद रह जाए मुझे, कि पहले इन्होंने दुनिया की हुकूमतों पर कब्ज़ा किया है, आपके सामने है दुनिया की हुकूमत इनके पास हैं। अगर आप ही समझते हैं कि नहीं पाकिस्तान या इस्लामी दुनिया की हुकूमतें, भाईजान इस्लामी दुनिया की बादशाहतें, इस्लामी दुनिया की हुकूमतें, अंग्रेज़ों की बनाई हुई हुकूमतें, ये ज़्यादातर अब उनका तायुन जो है वो यहूदी कर रहा होता है। यानी मैं अभी तक मुतमइन नहीं हुआ हूँ चाइना के ऊपर या रशिया के ऊपर कि ये इतने अच्छे हो गए, मैं अभी तक, क्योंकि वो जो मेरी समझ में जो इनकी थ्योरीज़ आई हुई हैं या जो मेरी समझ में साजिशें आई हुई हैं, तो मुझे हज़म नहीं होती ये बातें, मुझे लगता यह है कि नहीं, हर चीज़ के पीछे यही होते हैं हुकूमतें। दूसरे मरहले में जो इन्होंने कब्ज़ा किया है वो मीडिया पर किया है, मीडिया पर इनकी हुकूमत है आपके सामने, और मीडिया की हुकूमत जो है वो इस मौजूदा हुकूमत सियासी हुकूमत से ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि मीडिया वॉर लड़ते हैं वो। दाइश मीडिया वॉर के थ्रू जो दाइश बनी है ना, हकीकत में क्या थी वो तो आपने देख लिया। हाज कासिम गए, 3 महीने लगेंगे दाइश को ख़त्म कर दूंगा। जब शहीद हुआ मोहसिन हुज्जा जी की शहादत पर हाज कासिम ने कहा कि 3 महीने के अंदर मैं दाइश को ख़त्म कर दूंगा, और वो 3 महीने भी नहीं लगे, उससे पहले ही दाइश को लपेट दिया। एक ही शख्सियत आपकी, नाम तो एक ही शख्सियत का आया, ठीक है दुनिया से लोग बहुत गए इंशाल्लाह, लेकिन शख्सियत का एक ही आया, और उतने बड़े फितने को जिसे मीडिया ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया था कि पाकिस्तान में कहीं दाइश की चौकिंग नज़र आ जाए तो लोगों की चीखें निकलने लगती थी कि दाइश आ रही है। ये दाइश को आपने देख लिया, ख़वातीन बच्चियों को मार के अपने ऐलान को करना है कि हम भी आ गए हैं अफगानिस्तान में, और बच्चियों के स्कूल पर धमाका कर दें। दाइश की जो हैसियत है वो इंशाल्लाह हमको पता है, लेकिन मीडिया ने जो दाइश बना के पेश की है, एक ही कपड़ों में है, चाकू एक ही तरह का हाथ में, सर पकड़े हुए, इनके कद लंबे हैं, जो कैदी हैं वो सारे कद छोटे हैं। आप देखिएगा सारा ये हॉलीवुड है, ये हॉलीवुड की रवैश है, पीछे पानी है और ये लहरें मन रही हैं। बाद में आप देखेंगे सारा का सारा जो है ना, ये वही फोटोशॉप और ये मिक्सिंग है जो कुछ भी की गई। हॉलीवुड ने पूरी तरह साथ दिया इनका, तो वो ताकत बनाने की उनको पेश करने की कोशिश की गई है। हो ये मैंने तस्करा किया क्यों था, मैं खुद भूल जाता हूँ। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अहसन तो सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद फरजान। वो मैंने 6-7 चीज़ें आपको बतानी थी। पहली चीज़ हुकूमतें हो गई, दूसरी चीज़ मीडिया हो गई, तीसरा इकनॉमी, पूरी दुनिया की इकनॉमी इनके हाथ में है या नहीं है। उस वक्त भी थी जो मदीने के लोग साथ नहीं दे रहे थे ना, मौला कायनात अकेले निकले गर्दने काटने के लिए। मसला ये था कि उस वक्त भी लोगों ने IMF और वर्ल्ड बैंक से, उस वक्त के IMF वर्ल्ड बैंक से इन्होंने कर्ज़े लिए हुए थे, सारे मुसलमानों ने, सारे अहले मक्का ने। इनकी चोरत नहीं थी कि यहूदियों के खिलाफ कायम करते, सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तबका समझा जाता था, जैसे कि आज भी आपके जहनों में इस तरह से उन्होंने अपना एक रोब रखा हुआ है। तीसरी चीज़ इकोनॉमी है कि जिनके हाथ में, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। चौथी चीज़ क्या है सर? चौथी चीज़ जो है ना वो एजुकेशन है। एजुकेशन भी सारी नहीं के हाथ में। आपको लगता है कि आगा खान बोर्ड बन गया है, आपको लगता है ये पाकिस्तान के अंदर अपनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, सर ऐसी कोई बात नहीं है। खाली कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की बात नहीं कर रहा, ये अगर आप गहराई से बैठ के इस पूरे सिस्टम को देखेंगे तो जो कुछ आपको दिया जा रहा है ना, ये बहुत सोचे समझे मनसूबे के तहत फ़िक्री शख्सियात को निकाल के तकलीदी शख्सियात बनाना, ये हदफ है एजुकेशन का। यानी सोचने वाला आदमी नहीं चाहिए, मुकल्लद चाहिए। मुकल्लद यानी आपसे कहा जाएगा ये करो, आप खुद नहीं सोच सकते क्या करना चाहिए। काबिलियत ही नहीं होती हमारे अंदर कि हम फिक्र भी करें। कुरान कहता है तुम्हारा काम ही तदब्बुर तफक्कुर और ताक़ुल था, तुमने इस काम को छोड़ दिया है, बिल्कुल फारिग हुआ है वो। बहरहाल तो एजुकेशन एक चीज़ है, चौथे नंबर पर है। पाँचवें नंबर पर फूड। हमें लगता यह है कि ये खाना हमारे अपनी मर्ज़ी से हो रहा है, हम अपनी मर्ज़ी खेतों में उगा रहे हैं। सर ना खाना अपनी मर्ज़ी से उगा रहे हैं, ना आपको पता है कि आप क्या खा रहे हैं। आप जो कुछ खा रहे हैं इसमें कितना कचरा खा रहे हैं, कितना हराम खा रहे हैं, कुछ नहीं पता। चाहे अंडा हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे वो दूध हो, हर चीज़ पर इन्होंने गंदों में हर चीज़ को ख़राब कर दिया। अच्छा अब आपने बहस शुरू की यार ऑर्गेनिक होना चाहिए, आपको यकीन नहीं आएगा कि ऑर्गेनिक पर भी उन्हीं का कब्ज़ा है। उन्होंने आपके सामने ऑर्गेनिक बना के पेश करना है, हमें तो यही नहीं पता होता इसकी ऑर्गेनिक कहते किसको हैं, होती क्या चीज़ है ऑर्गेनिक। हम जो समझते हैं थ्योरीज इन्होंने दी हैं वही, और बाद में अभी आपको पता है कि अगर आपको ऑर्गेनिक कह के किसी चीज़ को बेचना है तो आपको सर्टिफाइड होना पड़ेगा, और वो भी अमेरिका से ही होंगे माशाल्लाह। यानी अमेरिका से हम सर्टिफाइड होंगे हम आया ऑर्गेनिक हैं या नहीं है, वो उसकी तारीफ पेश करते हैं। चौथी पाँचवीं चीज़ हो गई क्या? फूड हो गई। छठी चीज़ क्या चीज़ है? जिसको आप हेल्थ कहते हैं, हेल्थ जिसको आप कहते हैं, आप क्या दवाएँ खाते हैं, आप क्या इंजेक्शन लगाते हैं, पैदा होते ही क्या लगना चाहिए, उसके बाद कितनी वैक्सीन लगनी चाहिए, उसके बाद फिर अब आपको कौन सी वैक्सीन लगाई जा रही है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। किसी ज़माने में मेडिकल या डॉक्टर जो है वो अल्लाह के लिए काम किया करता था, खिदमत। आप पूछते थे यार डॉक्टर क्यों बन रहे हो, कहते थे इंसानियत की खिदमत के लिए। लेकिन ये बातें 30 साल पुरानी हैं, ये बातें कि हम इंसानियत खिदमत के लिए बन रहे हैं ये तकरीबन 30 साल पुरानी है। उसके बाद से ये मौजू ख़त्म हो गया, अब नहीं है। अरे आगे आ जाए, दूध पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। थोड़ा सा आगे आगे आ जाए ना, तो पीछे बैठने वालों को आसानी जाएगी। एक दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए। अब जब हर चीज़ इनके हाथों में है, अब ज़ाहिरी हुकूमत भी चाहिए, ज़ाहिरी हुकूमत भी चाहिए। बड़ा अच्छा प्लान किया, दाद तो देनी पड़ेगी ना, दाद तो आपको देनी पड़ेगी। 100-100 साल की प्लानिंग करते हैं सर हम और आप। मुझे यकीन नहीं कि हम 1 महीने की प्लानिंग भी करते हो। 1 महीने का प्लान पूरा हमारे सामने हो कि इंशाल्लाह हमने यहाँ पहुँचना है। आइए सो 1 साल का प्लान करती हो कि इंशाल्लाह इस तरह से इस इलाके में इतने स्टूडेंट्स और इतनी यूनिवर्सिटीज़ में हमें रबता करके अपने स्टूडेंट्स को यहाँ तक लेके जाना है। किसी को भी MWM और ऑर्गेनाइजेशंस, आप किसी की बात कर रहे हैं आपको पता चलेगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। यानी हम अच्छे प्लानर नहीं हैं और हम जो है बहरहाल हमें बनाए हम हैं सब। यानी हमारी सबकी जो अजीब मुसीबत यह है कि दिमाग जिन्होंने कंट्रोल किया है ना वो ऐसे ही है। हम सब जो है ना बहुत ही छोटा बहुत ही थोड़ा सोच रहे होते हैं। मुस्तकबिल बईद तो बहुत ही मुश्किल बात है, मुस्तकबिल सोचना मुश्किल हुआ हुआ है। हम अपना असल में हाल में फंसे हुए लोग हैं हमारे, यानी हालत ये हो गई कि हम हाल में फंसे हुए होते हैं। यानी मैंने आपसे कहा ना कि रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा टेंशन यही हो गया यार ये पानी उबल रहा है गटरों का, मसला ये कि रोड इतनी ख़राब हुई हुई है, मसला ये कि यार कल CNG बंद हो जाएगी, यार परसों जो है ना वो चीनी नहीं मिल रही है, उसके बाद फिर आटे का बोहरान शुरू हो जाएगा, उसके बाद कोई नया बोहरान आ जाएगा, ये 4-5 बोहरान निपटा दिए छठा बोहरान आ जाएगा। तो हम लोग जो है ना वो रोज़ाना की बुनियाद पर असल में सोच रहे होते हैं कि यार अब अगर गटर वाला उबल रहा है ना तो इस रोड के बजाय हमें इस रोड से निकलना चाहिए। हमारी प्लानिंग बस यही होती है और बड़े खुश हो जाते हैं अगर हमने एक साफ रोड निकाल लिया, रश वाले रोड से बच गए, हमने अंदर ही गलियाँ पकड़ ली हैं और अब हम पहुँच जाते हैं टाइम के ऊपर, टाइम वही आधे घंटे का, लेकिन अब हम अंदर ही गलियों से निकल। यानी हम लोग जो हैं हम नहीं मुसलमान, यानी मुसलमान पूरा का पूरा इन्हीं कामों में फंसा दिया उन्होंने कि जो सोच ही नहीं सकता, लंबा सोच ही नहीं सकता, दूर का सोच ही नहीं सकता, और उसके बाद खुद अपने लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं वो 100 साल की है। आपको यकीन आना चाहिए इस बात के ऊपर क्योंकि डॉक्यूमेंटेड है जो बात मैं कह रहा हूँ, ये लिखी हुई है कि उन्होंने 1887 में प्लान करते हैं, उससे पहले किताब ले आते हैं जियो स्टेट के नाम से, मार्केट में मौजूद है, उठा लीजिए जियो स्टेट, थियोडोर हर्जल ऑस्ट्रेलिया का एक सहाफ़ी है, वो एक किताब लिख देता है कि भाई ये जियो स्टेट क्या है, और उसके बाद वो कहता है जियो स्टेट हमने बनानी है, और वो दुनिया भर के दानिश्वर जो यहूदियों को जमा कर लेता है यानी स्विट्ज़रलैंड में, और उनको कहता है कि भाई हमारा प्लान है कि आइंदा हम ये चाहते हैं कि अपनी आलमी हुकूमत का क़याम करेंगे 100 साल के बाद ऐलान करेंगे। यानी 1987 के अंदर हमने जश्न मनाना है, अपनी 100 साल जो कामयाब सिलसिला चलेगा, हुकूमत बनाएंगे आलमी हुकूमत पूरी दुनिया के ऊपर, और उसकी सालगिरह यानी उसका पहला प्रोग्राम रखेंगे, ये वो उसमें लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेड है। और उसके बाद वो इसके लिए कोशिशें शुरू कर देते हैं, पहले माहौल बनाते हैं, आके आपके खलीफा से मिलते हैं, उस ज़माने मुसलमानों के पास ये इलाका सारा जिसको मैं शामात कह रहा हूँ, ये इलाका जहाँ मैं कह रहा हूँ कि इनकी निगाह मिडिल ईस्ट कहलाता है, ये इलाका जहाँ पर ये समझते हैं कि अगर हम आ जाएँ तो आलमी हुकूमत का क़याम हो जाएगा अगर हम इस इलाके पर कब्ज़ा कर लें, ये बाकायदा उस जगह को जाके मांग लेते हैं, आपके खलीफा से जाके उस जगह को मांग लेते हैं, कहते हैं जगह हमको चाहिए, और वो खुद जाता है 1901-1902 दो बड़ी मुलाकातें करते हैं, ये सारे के सारे जाते हैं जाके खलीफा अब्दुल हमीद दोवों में, उस वक्त उसको कहते हैं अब्दुल हमीद से कि हमें जो है ना वो ये दे दो हमें फ़लस्तीन। थियोडोर हर्ज़ल ख़ुद उस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं, इन्होंने 2-3 और बड़े बड़े लोग लिए हुए हैं उसी ज़माने में जो बड़े इकोनॉमिकल जिन थे, उनको लेके अब्दुल हमीद दोवों के पास जा रहे हैं 1901 की बात है, और कहा कि हमको ये फ़लस्तीन चाहिए, हमें ये फ़लस्तीन चाहिए। बहरहाल उस ज़माने में पता नहीं कहाँ से गैरत आ गई, आपके खलीफा उस्मानी था अब्दुल हमीद दोवों, खलीफा आखिरी उस्मानी खलीफा, इसको गैरत आ गई, इसने कहा तो मुझे कह रहा हूँ कि मैं अपने जिस्म का एक पीस काट के तुम्हारे हवाले कर दूँ, अपने जिस्म का एक टुकड़ा काट के तुम्हारे हवाले कर दूँ, कहा नहीं करूँगा। उसने धमकी दी, थियोडोर हर्ज़ल ने कहा कि अब आपको मैं बताता हूँ, नहीं की ना आपने, अब मैं आपको बताता हूँ आपकी खिलाफत कायम रहेगी तो आप कुछ करोगे ना, ये जुमला बाकायदा कहा कि अब तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारी खिलाफत बाकी रहेगी तो कुछ करोगे, ये कह के और इन्होंने काम शुरू कर दिया और पहली जंग अजीम शुरू हो गई 1914-1918। हमें नहीं पता चला ये पहली जंग अजीम क्यों हुई, यूरोप के अंदर है, आपस के झगड़े की वजह से शुरू हुई है, मुसलमानों को कोई ताल्लुक नहीं था पहली जंग अजीम से। हाँ, हमारा पानी, हमारी फिजा, हमारी ज़मीन इस्तेमाल की है इन्होंने, यानी मुसलमानों के इलाकों की, लेकिन ये जंग ये यूरोपियन जंग कहलाती है, पहली जंग अजीम हो गई। और इन्होंने उस जंग के अंदर एक ही काम किया सर, खामोशी से भरते रहे फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों को, फ़लस्तीन में यहूदियों को भरना शुरू कर दिया, पूरी दुनिया के यहूदी इलाके वहाँ बसा दिए। उसके बाद फिर हमें सज़ा मिल गई 1923 में, हमारी खिलाफत तोड़ दी कि तुमने साथ क्यों दिया जर्मनी का, हम कहते रह गए ना हमारी जंग ना हमारा कोई किरदार, हमारी खिलाफत क्यों तोड़ रहे हो, लेकिन बहरहाल हम तो टूटे हुए मुसलमान, पहले बिखरे हुए लोग थे, जो आज हालत है मुत्तहिद ना होना, वो ज़माने में हमारी ये हालत थी, आपस में झगड़े हो रहे थे अरब अजम और तुर्क, ये तीनों लड़ रहे थे आपस में, अजम कुछ और कहते थे यानी हम फारस कहते हैं, अरबी कुछ और कहा करते थे और इस तरह तुर्की कुछ और कहा करते थे, हमारे आपस के खिलाफत थे शदीद, हम संभाल ही ना सके और हमारे हाथ से खिलाफत उस्मानिया निकल गई, हम टुकड़े टुकड़े में बट गए। और फिर फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा हो गया बरतानिया का, बरतानिया ने अपना कैमूमियत कहलाती थी यानी अपने कॉलोनी बना लिया फ़लस्तीन को, और उसके बाद फिर वो जो आप डिक्लेरेशन बिलफोर सुनते हैं या साइकस पिको जो आपने معاہدہ سنا ہوا ہوگا سائیکس پیکو یعنی فرانس اور برطانیہ کے خلاف، یا بلفور ڈکلریشن جو برطانیہ نے دیا 1948 سے پہلے، اور کہا کہ ہم یہ سارا علاقہ فلسطینیوں کو دے کے جا رہے ہیں، یہودیوں کو دے کے جا رہے ہیں. انہوں نے یہ علاقہ یہودیوں کے حوالے کر دیا جہاں پہ عرب رہا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی انہوں نے پھر یہ کام کیا، مشہور کروا دیا. ہٹلر تو بندے مار رہا ہے، یہ تو کیا ہولوکاسٹ کے نام سے معروف ہو گئی بات، کہ یہ تو لے جا رہا ہے اور لے آ کے جلا دیتا ہے، پتہ نہیں کیمیکل لگا دیتا ہے، پتہ نہیں آگ لگا دیتا ہے، پتہ نہیں پگھلا دیتا ہے، اور اس طرح کے اس نے جو ہے وہ برنرز بنائے ہوئے، مشہور کر دیا. ہٹلر جو ہے نا اس نے مارا ہوگا، میں نہیں کہتا نہیں مارا ہوگا، لیکن جتنا مارے نہیں تھے نا اتنی زیادہ شہرت ہو گئی. کتنے پتہ ہے آپ کو؟ 6 ملین یعنی 60 لاکھ ہٹلر نے یہودی مار دیے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور آپ اس کو نہ چیلنج کر سکتے ہیں نہ آپ اسے تحقیق کر سکتے ہیں. اور کوئی کرے بھی چاہ رہا تو جیل جاتا ہے. روجے گارودی فرانسیسی ہے، پڑھیے گا آپ اس کو، روجے گارودی کو سرچ کیجئے، فرانسیسی دانشور ہے. اس نے بیچارے نے ریسرچ کر دی ان موضوعات کے اوپر. فرانسیسی ہوتے ہوئے بھی جیل میں رہا، ساری دولت اسے چھین لی گئی. آج کل جو فارغ کر دیا گیا، پروفیسر ہوا کرتا تھا بیچارے یونیورسٹی کے اندر، فارغ ہو گیا، پتہ نہیں زندہ یا مر گیا. اسی طرح پتہ نہیں کتنے لوگ جنہوں نے ریسرچ کی بات کی، جنہوں نے تحقیقات کی بات کی. بابا یہودی زیادہ خوفزدہ، یہودیوں سے زیادہ ڈرپوک، یہودیوں سے زیادہ ڈرپوک دنیا میں کوئی نہیں ہے. قرآن نے اس کی گواہی دی ہوئی ہے. سورہ جمعہ، آپ انشاءاللہ سورہ جمعہ جو تاکید ہے آپ ہر جمعہ پڑھا کریں، وہ اسی لیے ہے کہ اس کے اندر یہودیوں کا بڑا شاندار کردار ہے، جو ہر مہینے ہر ہفتے آپ کو کہا جاتا ہے. بھائی اس کو یاد رکھنا کہ یہودی جو ہے انضام تم انکم اولیاء اللہ، اگر یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ ہو، اللہ کے ولی ہو، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. پھر کہا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، وہ جو تم نے حرکتیں کی ہوئی ہیں نا، تم کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. یہ قرآن نے آپ کو بالکل سیدھا سلوشن دیا ہوا ہے کہ یہودی کے آگے آپ جا کے صرف چیخ کے بولیں، زور سے بولیں صرف، یہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. یہ صحیح ہے، غلط بات نہیں ہے کہ لوگ گھر کی چھریاں لے آئیں پھل کاٹنے والی. اس وقت انتفاضہ میں، دوسری انتفاضہ میں استعمال ہوئی تھیں چھریاں، جو گھر سے بچے چھریاں لے آئے تھے پھل کاٹنے والی، اور یہودی جو ہے نا ان چھریوں سے مارے جا رہے تھے، ڈر کے مارے ان کی حالت خراب تھی. وہ لدے ہوئے ہوتے ہیں خود اسلحے سے، لیکن وہ چھریاں ان کو ڈرا رہی تھیں. اور ابھی پتھر، یہ انتفاضہ انشاءاللہ تیسری شروع ہوئی، یہ پتھر کی انتفاضہ ہے، پہلے چھریوں کی انتفاضہ تھی. یہ زندہ رہنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، مرنے کے لیے تو نہیں آئے. یہ میڈیکل پہ کیوں قبضہ کیے بیٹھے ہیں؟ اپنی عمروں کو بڑھانے کے لیے. انہوں نے کیوں ہم کو ہمیں تو ہائبرڈ والا بیج کھلا کے اور خود جو ہے آرگینک والا کھا رہے ہیں. کیوں کھا رہے ہیں؟ تاکہ ہم جلدی مر جایا کریں، عقل بھی ہمارے اندر کم رہ جائے، عمر بھی ہماری کم ہو جائے، بچے ہمارے ناقص پیدا ہونا شروع ہو جائیں، اولاد ہی ہمارے یہاں کم پیدا ہونا شروع ہو جائیں. اور ان کے ہاں اس کی کوئی وہی نہیں ہے، مسئلے ہی کوئی نہیں ہے، عمریں ہی بڑی بڑی ہو رہی ہیں. یعنی ہنری کسنجر جو ہے وزیر خارجہ ہے اس زمانے کا، کہ جب ویتنام کی جنگ لڑی گئی ہے 65 سے 75 تک، اس زمانے کا وزیر خارجہ ہے امریکہ کا ہنری کسنجر، آج بھی زندہ ہے اور آج بھی دماغ اسی طرح سے چل رہا ہے. اگر آپ پوچھیں کھاتے کیا، وہ کہتے ہیں بھائی 2 سے 3 پیسز کھاتا ہوں خیار کے، یعنی جس کو آپ کھیرا کہتے ہیں، یعنی نہ گوشت ہے، نہ سبزی ہے، نہ چاول ہے، نہ دال ہے ان کی خوراک میں، نہ تیل ہے، نہ کچھ ہے، وہ خیار کھاتے ہیں. وہ بھی ان کا اپنا آرگینک ہے جس کے بیجوں کو محفوظ اس وقت بل گیٹس کر رہا ہے. یعنی بل گیٹس کی اپنی ساری اس وقت جو توجہ ہے اس کی، وہ ان دیسی بیجوں پر ہے کہ جو ہمارے کبھی ہوا کرتے تھے اور اب ختم ہو چکے ہیں، کہ جو سبزیوں کے بھی ہیں، دالوں کے بھی ہیں، فلاں ہر چیز کو جو ہے نا بل گیٹس صاحب محفوظ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بنکرز بنائیں جن کی حفاظت کے اوپر شاید کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں صرف اس کی حفاظت کے لیے، کہ یہ ہمارے بیج دیسی جو ہے نا وہ بل گیٹس صاحب بچا کے رکھ لیں. خوب، اب یہ جو پیدا ہوئے ہیں ہمیشہ حکومت بنانے کے لیے، ہمیشہ لمبی عمر کرنے کے لیے اور ہمیشہ رہنے کے لیے، آپ نے ان کو ڈرانا شروع کر دیا. ہوتا ہی ہوا ہے کہ یہ عالمی حکومت تیزی سے اپنے پلان کی طرف بڑھ رہے تھے، انہوں نے جو ہے وہ فلسطین سے اپنے پاؤں نکال لیے تھے باہر، مصر سے بھی لے لیا، بیروت سے بھی کچھ علاقہ لے لیا، اردن سے بھی کچھ علاقہ لے لیا، اور شام سے بھی کچھ علاقہ لے لیا، اور پھر اعلان کر دیا بھائی نیل سے فرات تک. نیل سے فرات تک جا کے دیکھیے تو ذرا، نیل سے فرات تک یعنی آپ کا ترکی پورا جائے گا، سعودی عربیہ پورا جائے گا، اردن پورا جائے گا، مصر پورا جائے گا، نیل سے فرات تک کا کہہ دیا بھائی انہوں نے. یہ لبنان، یہ شام اور یہ تو گئے، عراق تک آپ کا جو ہے وہ جائے گا. نیل سے فرات تک کی باتیں کی ہیں انہوں نے، جہاں جہاں فرات پہنچتا ہے، جہاں جہاں نیل پہنچتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں پورا مڈل ایسٹ چاہ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ پتہ تھا اس سرزمین پر جس نے حکومت کی ہے، وہ جس نے حکومت بنائی ہے وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا. وہ اپنے اس نظریے پہ کہ جو ان کو خوشخبریاں دی گئی تھیں، اور وہ اس وقت دی گئی تھیں جب یہ واقعی اللہ کے مطیع تھے، نبی کے ماننے والے تھے، لیکن بعد میں ان سے چھین لیا گیا اور اب کہا کہ بھائی ختم، اب یہ اہدیت ظالمین تم تک نہیں پہنچے گا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جو امامت آپ دے رہے ہیں یہ میری ذریت کو بھی دے دیجیے گا، تو کہا نہیں نہیں نہیں، تمہاری ذریت میں اہدیت ظالمین بھی ہیں جن تک یہ اب نہیں پہنچے گا. اس وقت خدا نے خوشخبری دے دی تھی کہ تمہارے اندر نہیں ہونا، تمہاری ایک نسل ہو جائے گی انشاءاللہ جو لے لے گی، جس کو بنی اسماعیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل کو نہیں ملے گا. اور پھر بنی اسرائیل، بنی اسماعیل بیچارے مکے، تیاریاں یہ وہ سب، ائمہ اہل بیت آئے، एक एक करके सब बहुत ही कम उम्र में शहीद हो गए। आपको इसके पीछे भी रिसर्च करने की ज़रूरत है। बज़ाहिर तो नादान मुसलमानों का काम है, लेकिन इसके पीछे एक दाना दुश्मन भी है जो बहुत सोच समझ के सारे काम करवाता रहा। हो गया, क्यों खींच के खिलाफत उस वक्त राशिदा को, क्यों खींच के उस वक्त उस खिलाफत को शाम के बॉर्डर पर ले गए कि जो मदीने में था, मक्का मदीना हमारा मरकज है, और ऐसा था खींच के आप इसको शाम तक ले गए। क्यों ले गए शाम, क्यों रूमियों ने अपने करीब कर लिया, क्यों ईसाइयों ने अपने करीब कर लिया, ये सारी बातें बहरहाल वो हैं जिसको सोचने की ज़रूरत है कि जो ऐसा ऐसा प्लानिंग के साथ, ये प्लानिंग है पूरी पूरी। और फिर आखिरी प्लानिंग ये थी कि इसराइल हमने बनाना है, और उन्होंने बना भी लिया और इस तरह फैला भी दिया। फ़लस्तीनी जो बेचारे असल थे, असल स्टेक होल्डर्स तो वो थे कि उनको क़याम करना चाहिए था, उन्होंने बेचारों ने किया, ये नहीं कि नहीं किया। इब्तिदा में उन्होंने बहुत क़याम किया, बहुत शहादतें दी हैं। अगर आप दीर और यासीन का ही खाली वाक़या पढ़ लें, जो कि मनहूस अरिल शौरोन, जो मोटा इनका वज़ीर आज़म आया था, जिसका ब्रेन बहुत बड़ा है और अभी तक उसको महफूज रखा हुआ है, दफनाया नहीं अभी तक उसको, इन्होंने कहीं रखा हुआ है फ्रीजर में, फ्रीजर या फ्रिज में कहीं रखा हुआ उसको, जिंदा से मुराद ये कि कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ा ब्रेन था, ऐसे जाने नहीं देंगे उसको। तो वो अरिल शौरोन जो है वो दीर यासीन का कातिल है। अगर आप उसको पढ़े किस तरह से ये आए, कल कोई बेचारा हमें दोस्त कह रहा था, मैंने गुफ्तगू इस तरह की थी कि आगा गलतियाँ तो इनकी भी हैं ना, फ़लस्तीनियों की, इन्होंने अपनी ज़मीनें बेची थी। मैंने कहा भाई ये बड़ा प्लानिंग का हिस्सा होता है कि जब आप एक कौम को मुस्तज़फ़ रखते हैं ना, काफ़ी अरसे मुस्तज़फ़ रखते हैं, और अगर आपको इसका प्रैक्टिकल देखना है तो आप जाएं और जाके अभी का बल्तिस्तान देख लीजिए। अभी के बल्तिस्तान में सेम वही साजिश दोहराई जा रही है कि जो इसराइल बनाने से पहले फ़लस्तीन में किया गया था, कि लोगों को मुस्तज़फ़ रखते हैं, बिज़नेस ऐसा ऐसा छीन लेते हैं, बिज़नेस जो है वो मुकामी लोगों के हाथ से छीन के वहाँ पर दूसरे लोग बिठा देते हैं। बिठाने के बाद फिर जब आपको कहते हैं यार अब तो, यानी अब क्या करें, अब सर्वाइव करने के लिए, तो कहते हैं ज़मीनें बेचो, आप ज़मीनें बेचो, हम ख़रीदार हैं। कितने की है? 500 की है, हम आपको 1000 रुपये देते हैं। अब ये बेचारा जो पहले ही मुस्तज़फ़ हो गया है, इसका इलाका था, इसको पता ही नहीं चला कैसे मेरे यहाँ से कारोबार निकल गया। सर दो बड़े चौक हैं वहाँ पर, अलमदार चौक बल्तिस्तान के अंदर, एक अलमदार चौक है और एक और चौक शहदा चौक, आप इन दो पे चले जाइए, बहुत बड़ा बड़ा बाज़ार हुआ करता है कि ज़माने में शियों के हाथ में। यानी मैं जब 25 साल पहले या 20 साल पहले पहली मरतबा गया था, मुझे कहा कि 10% दूसरे हैं, 90% अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, और ठीक 20 साल के बाद कहा कि 90% कुछ और लोग हैं, 10% हम हैं, सिर्फ 20 साल के अंदर। अच्छा ये फलां किसने ज़मीन ख़रीद ली, ये तो उसने ख़रीद लिया, ये वाला इलाका ये उसने ख़रीद लिया, ये वाला, तो बिल्कुल यही काम हुआ है, मुस्तज़फ़ कर देते हैं कौमों को और फिर ऐसे ऐसे उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद लेते हैं। जब उनकी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद लेते हैं ना भाई, तो उसके बाद फिर ये दावा कानूनी तौर पे करते हैं कि यार ये तो हम आधे ज़्यादा मुल्क के तो हम लोग मालिक हैं, ये तो सारा हमारा है, ये सरजमीन सारी हमारी है, फ़लस्तीन से हमने ख़रीदी हुई है। ये इस तरह का यूनाइटेड नेशन में केस पेश कर देते हैं और फिर डिक्लेयर हो जाता है कि 48 के अंदर इसराइल बन गया। 1948 में इसराइल बन गया, अमरीका 6 घंटे के अंदर कबूल कर लेता है, 1 साल के अंदर यूनाइटेड नेशन कबूल कर लेता है, पूरी दुनिया पर प्रेशर डालते हैं, सब मिलकर इसराइल को ऐसे मुल्क तस्लीम कर लेते हैं। यानी इतना बड़ा धोखा हुआ है कि घर जो बेचारे रहने वालों का था उनको बाहर निकाल के 60 लाख फ़लस्तीनी मुल्क से बाहर निकाल के, 60 लाख फ़लस्तीनी मुल्क से बाहर निकाल के मुल्क के ऊपर अपना मुल्क बना दिया, पूरी दुनिया से यहूदी जमा कर लिया। आप लोकल यहूदी तलाश करने की कोशिश करेंगे ना, फ़लस्तीनी यहूदी तो मिलेगा ही नहीं कोई। तुम कहाँ से आए हो? पता नहीं किसी रशिया के स्टेट से आए हो, तुम कहाँ से आए? यूरोप के स्टेट से आए हो, तुम कहाँ से? अमेरिका से, तुम कहाँ से? इथियोपिया से, तुम कहाँ से? अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान पहुँच गए भाई कबाइल अपने तलाश करते हुए कि हमारे कबाइल अफगानिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं। बहुत सारे पठान कबीलों को उन्होंने एहसास दिलाया कि आप तो यहूदियों पीछे से तारीख दिखाते हैं, बाकायदा हमने आपको फलां ज़माने में हिजरत करने मजबूर किया था कि इन इलाकों को अपने कब्जे में लेना था और सकाफत को समझना था और यहाँ के कल्चर को देखते हुए मुस्तकबिल के फासले करने थे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये, और उसके बाद फिर अब बन गया फ़लस्तीन और बड़े आसानी से वो 100 साल हुकूमत की तरफ जा रहे थे जो उन्होंने तय किया था। बदबख्ती ये आई कि ईरान में इनकलाब आ गया, खुमैनी बुतशिकन 1979 इनकलाब आ गया। इनकलाब इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आया है, ये इनकलाब वो नहीं था जिसकी ये उम्मीद रखे बैठे थे, यानी ये दूसरे लोग सोच भी सकते थे, या यूं कहिए कि जो इनके कलम से निकल गई बात, इनके दिमाग में भी नहीं थी कि ये शिया कि जिनको हमने लगा दिया है किसी एक काम के ऊपर, ये लोग जो है ये हुकूमत की बात भी कर सकते हैं। और ऐसे ही हुआ, 1100 साल के अंदर जो हमारी दूरी रही अहले बैत अलैहिस्सलाम से और फुकहा को हमने वो मुकाम दिया नहीं जो दिया जाना चाहिए था उस बुनियाद पर, और खुसूसन फुकहा को एक जगह बैठने भी नहीं दिया इन्होंने। आपको मालूम है तशय्यों की जो मरकज़ियत है 1100 साल से, ऐसा नहीं है कि आज नजफ़ को आप देख के समझेंगे हम 1000 साल से नजफ़ के अंदर, मदरसा 1000 साल पहले बना था लेकिन हम 1000 सालों में इतनी मरतबा अपना मरकज़ तब्दील कर चुके हैं कि आप ताज्जुब करेंगे तारीख तशय्यो 1100 साल की पढ़ के। क्या आप कभी इराक़ घूम रहे हैं? इराक से निकले कभी ईरान के मुख्तलिफ शहरों में घूम रहे हैं? वहाँ से निकले आप हिजाज पहुँच गए, हिजाज में भी आपका मरकज़ रहा है कतीफ़ और अहसा, वहाँ से आपको निकाल दिया गया, आप जो है वो लेबनान चले गए, जुनूबी लेबनान के अंदर आपने मरकज़ बनाया हुआ था, वहाँ से निकाल दिया गया, आप अफगानिस्तान ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान पहुँचें, یہاں سے پھر آپ اصفہان پہنچیں, اصفہان سے پھر آپ شہر ری پہنچیں, پھر شہر ری سے آپ جو ہے وہ پہنچیں قوم, یعنی لمبا سفر کر کے, اور پھر دوبارہ سے نجف ایجاد دوبارہ بنائے نجف. لیکن ہم ہزار سال پورے گھومتے رہے دنیا کے اندر, ہمارا مرکز کوئی نہیں تھا, بیٹھنی نہیں دی ہم کو. اور تشیع جب فقیہ سے دور ہو جائے, نائب امام سے دور ہو جائے, تو پھر پوری دنیا کی تشیع ایک الگ مزاج کی بن گئی تھی. اب جب اس کے اندر یہ پہلی بار بات ہوئی نا اس طرح کی, جب وہاں پہلی مرتبہ اس طرح کی بات ہوئی نا کہ حکومت اسلامی کا قیام خمینی فقیہ, تو بھائی سنی اور وہابی اور یہودی اور عیسائی اور باہر والے تو کیا ہی ہماری مخالفت کرتے. ہم نے 79 میں پہلے اندر مخالفت مول لی ہے, پہلے ہمارے خلاف قیام ہوا یہاں پر, جنہوں نے حکومت اسلامی اور امام خمینی کو پہچان کے کام شروع کیا تھا. کسی نے نہیں پہچانا یہاں پر, کسی نے نہیں مانا ہمیں شروع میں, نہ خطبہ مان رہے تھے, نہ ذاکرین مان رہے تھے, نہ نوح خان مان رہے تھے, نہ ہماری عام شیعہ لیڈرشپ مان رہی تھی, نہ مسجدوں میں شہید عارف حسین الحسینی پہلی مرتبہ شہید لیڈر بننے کے بعد یا قائد بننے کے بعد 1984 میں پہلی مرتبہ آتے ہیں پاکستان, کراچی میں آنے کے بعد خطاب کے لیے نیو, یہ جو پرانا رضویہ کا امام بارگاہ ہے, بات ہوتی ہے کہ یہاں پر پہلا خطاب ہوگا. ابھی ایئرپورٹ سے سیدھے یہیں پر آئیں اپنی جیپ کے اندر, اور یہاں پر ٹرسٹیز نے دروازے بند کر دیے, مسجد کے دروازے بند ہو گئے کہ بھائی ہم نے یہ قیادت اور سیاست اور نیا نظام اور ولی فقیہ اور فلاں یہ نہیں ہو سکتا, اور اولڈ رضویہ کے دروازے ہمارے لیے بند کر دیے گئے کہ آپ یہاں مولانا صاحب کو سید لے جا کے آپ ان کو خطاب کروائیں گے, آپ سیاست پہ باتیں کریں گے, ہمارے لیے دروازے بند تھے 84. اور پھر 84 کے اندر ہمیں انہوں نے اسی جو سیڑھیاں بنی ہوئی مسجد کی, اس کے اوپر جیپ چڑھائی گئی, اور اس کے اوپر آدھی نیچے, اور پھر شہید نے کھڑے ہو کے وہاں پر جیپ کے اوپر خطاب کیا. یہ پہلا استقبال ہے ہمارا کراچی کا 1984. تو یہ جب شیعوں کو یقین نہیں تھا کہ حکومت اسلامی کی بات بھی کی جا سکتی ہے, تو یہودی تو بالکل ہی اس نے مائنس کیا ہوا تھا شیعوں کو کہ یار یہ کوئی پاور تھوڑی ہے, متفرق لوگ ہیں, خاص چیز میں لگے ہوئے ہیں, ان کو تو دشمن شناسی اور دشمن سے لڑنا اور فلاں اور یہ سب ان کے مسائل ہی نہیں ہیں. اور ایسا ہی تھا, ہم نے آپ کو بتا دیا تاریخی گرو دور پڑے محمد والے محمد. یار اب آگے مت بلاؤ, اس سے آگے کی جگہ نہیں ہے, مجھے گود میں بٹھانے پڑ جائیں گے دو تین لوگ. بیٹا اب جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیں, گرو پڑے محمد والے محمد. سر آخری مرحلے میں داخل ہو رہی گفتگو ہماری, تاریخ سے ہمارا ختم ہو گیا ہے, اب ہم تاریخ پر بات نہیں کریں گے. انقلاب اسلامی ایران نے فلسطینیوں کو, کہ جو تقریباً اپنے قوس سے خود پیچھے آ گئے تھے یاسر عرفات کی خیانت کی بنیاد پر, پی ایل او آرگنائزیشن تھی, اس نے صلح کر لی, دو بڑے معاہدے ہوئے 92-93 اوسلو اور میڈرڈ, اور اس نے کہا کہ یار 1992-93 اس نے کہا یار اب جو دے سکتے ہو دے دو, اور یہ جو باہر فلسطینی ہیں چلے ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں کہ تم اب جو عراق میں ہو عراقی ہو جاؤ, جو شام میں ہو شامی ہو جاؤ, جو لبنان میں ہو لبنانی ہو جاؤ, جو جہاں پر ہو وہاں کے پاسپورٹ لے لو. ساری دنیا نے, یورپینز نے اور خصوصاً یونائٹڈ نیشن نے اور امریکہ نے پریشر ڈالا ان مسلمان ملکوں پہ, اور ان کو کہا کہ جو فلسطینی آپ کے پاس ہیں اب آپ ان کو اپنے اپنے پاسپورٹ دے دیجیے, اب یہ فلسطینی نہیں رہیں گے, اب یہ آپ کے ملک کے ہو جائیں گے, ان کو نیشنلائز کر دیجیے, پاسپورٹ ان کو اپنے ملک کا دے دیجیے. یہ ڈکلیئر ہو گیا, طے ہو گیا. 79 میں انقلاب آ گیا, امام خمینی نے دوبارہ سے اٹھایا ہی موضوع قدس کا, بات ہی پہلے دوسرے سال بات ہی قدس کے موضوع پہ کی, دنیا تعجب کر گئی, شیعہ بھی تعجب کر رہے تھے کہ یعنی اتنا بڑا اتنا امپورٹنٹ موضوع ہے. دیکھیے گا ابھی جو ایک نیا شبہ ایجاد کیا گیا ہے تشیع میں, ایک نیا شبہ ایجاد کیا گیا کہ آپ اتنے بڑے بڑے مظاہرے کرنے کی بات کرتے ہیں, قدس کی آزادی کی باتیں کرتے ہیں, مذہب سے بات کرتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ جنت البقیع کی بات نہیں کرتے. یہ شبہ ہے جو یاد کیا گیا ہے, آپ نے کبھی اس پہ مظاہرے نہیں کروائے, آپ نے اس پہ ریلیاں نہیں نکلوائیں, آپ نے اس کے لیے کوئی دن مختص نہیں کیا, یہ شبہ ہے. شبہ دیکھیں, شباہت حقیقت سے شبیہ ہونے کی وجہ پہ شبہ کہتے ہیں اس کو, یعنی شبہ جو ہے وہ ضد نہیں ہوتا ہے, شبہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس کو فوراً پہچان لیں کہ یار یہ بات غلط ہے. شبہ جو ہے نا حقیقت سے قریب ہوتا ہے, شباہت رکھتا ہے, اس لیے اس کو شبہ کہتے ہیں. یہ شبہ کھڑا کر دیا گیا. خمینی کیا فرما رہے ہیں, خمینی فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جڑ سے اکھاڑنے کی بات کی ہے سازش کو, یہ یہودی اور یہ اسرائیلی یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے سعودی حکومت بنوائی ہے, یعنی دوسرے لفظ میں آل سعود کو یہ علاقہ دیا ہے, یہی تو ہیں جنہوں نے خلافت عثمانیہ ختم کروائی ہے, یہی تو ہیں جنہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے سارے مسلمانوں کو, یہی تو ہیں جو شیعہ سنی اختلافات کی بنیاد پر, دیوبند وہابی اختلافات کی بنیاد پر آپس میں لڑواتے ہیں, فرقہ واریت وجود میں لاتے ہیں. آپ پروبال کاٹنے کے بجائے وہابیت اور یہ فلانا اور یہ ملک اور سنی اور اس کو, بھائی اسے چھوڑو, ان چکروں میں نہ لگو, اصل جڑ سے اکھاڑو, اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑو. خمینی پوچھے گا نا بڑا اچھا, اچھا یہ وہی ہے میں سمجھانے کے لیے آپ کو کہتا رہا ہوں. جب آپ نے دو چیزیں بڑی سنی ہوئی ہیں, ایک مصباح الہدیٰ اور ایک سفینۃ النجات, سنی ہوئی بات آپ نے, سنی ہوئی نا شیعہ نا سارے، کربلا کو، امام حسین علیہ السلام کو، سفینۃ النجات اور مصباح الہدیٰ. مصباح الہدیٰ کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ مصباح الہدیٰ اور سفینۃ النجات، اگر آپ ان دونوں چیزوں ایک رکھیں، ایک بار کشتی اور ایک بار وہ چراغ ہدایت، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ اگر آپ سمجھیں اس کو، یہ ہے کہ جب کشتیاں بھنور میں پھنس رہی ہوتی ہیں، پتہ ہے نا کشتیاں بھنور میں پھنستی ہیں نا، سیلاب آ گیا، طوفان آ گیا، یہ ان کو خشکی اور گرمی، خصوصاً رات ہو جائے تو ان کو خشکی نظر نہیں آتی. خشکی تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ جب وہ مصباح الہدیٰ، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چراغ جو کہ کشتیوں کی رہنمائی کے لیے، کہ بھائی یہاں پر خشکی ہے، اگر تمہیں یہ والی لائٹس نظر آئیں تو اس طرف آ جاؤ تاکہ تم نجات پا جاؤ، خشکی کی طرف آ جاؤ گے. یہ اس لیے مثال دی گئی تھی. اچھا، اب یہاں پر جو کشتی کو پہنچانا ہوتا ہے، سوچئے گا، کشتی کو جو ہے وہ مصباح الہدیٰ تک پہنچانا ہوتا ہے یا اصل میں خشکی تک پہنچانا ہوتا ہے؟ بات سمجھنے کی ہے نا یار، یہ کہ یہ جو نجات دلانے والی بات ہے نا، یہ آپ کو سمجھائی جا رہی ہوتی ہے. یعنی جب خمینی بت شکن نے قدس کو پکڑ لیا نا، مراد یہ تھوڑی کہ قدس کی آزادی کے بعد آپ کا کام رک جانا ہے. بات یہ ہے کہ بھائی فتنے کو جڑ سے اکھاڑو، اصل مسئلہ یہاں پر ہے. لبنانی خدا کا شکر ہے حزب اللہ سمجھ گئے اس بات کو اور ان کی رگ کے شہر رگ کے اوپر بٹھایا ہے. یعنی لبنانیوں کو، حزب اللہ کو، اسرائیل کی شہ رگ پر بٹھا دیا ہے، زبردست کام ہوا ہے. ادھر فلسطینیوں کو امپاور کر دیا حزب اللہ کی وجہ سے، ان دونوں نے قیام کیا، ایران پیچھے سپورٹ کر رہا ہے، سپورٹ ہوئی اور یہ قضیہ دوبارہ ایک بار اٹھا. وہ لوگ کہ جو تقریباً یہ طے کر چکے تھے کہ بھائی غزہ اور اریحا، غزہ اور اریحا دو چھوٹے چھوٹے علاقے فلسطین کے، اور دونوں کا آپس میں رابطہ بھی نہیں ہے، بیچ میں اسرائیل ہے. یہ غزہ کا اریحا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اریحا وہ علاقہ ہے کہ جہاں بھی بیت المقدس ہے، اور غزہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر ابھی حماس ہے. یہ دو الگ الگ علاقے ہیں. قیام کی حالت میں غزہ آ گیا، حماس یہاں پر تھی. وہ حماس جو بیچاری اریحا میں، یعنی ان علاقوں میں جو بیت المقدس کے علاقے کہلاتے ہیں، وہاں پہ ذرا کمزور تھی، اور پی آئی او کا وہاں رول بھی بہت زیادہ ہے. محمود عباس جیسا منافق جو یاسر عرفات کے بعد لیڈرشپ آئی، وہ تو ایک ہی بندے کا نام دے دیتا ہے کہ بھائی یہ ایکٹیو ہے، یہ ایکٹیو ہے، اس کو مار دو. اور وہ بیچارے فلسطینی جو مالی اعتبار سے بدحالی کا شکار ہیں، نظریاتی اعتبار سے بدحالی کا شکار ہیں، ان میں بہت سارے ٹاؤٹ ہیں، گورنمنٹ کے ٹاؤٹ بھی ہوتے ہیں. وہ اپنے ہی بندہ جو ہے وہ مار بھی دیتے ہیں، مروا کیا دیتے ہیں، صرف نشاندہی نہیں کرتے، مار بھی دیتے ہیں. فلسطینی اسرائیلی سے پیسے لیتے ہیں. یحیی عیاش بڑی مثال ہے، بہت بڑا لیڈر تھا حماس کا، یحیی عیاش، پڑھی بیچارے اس کے بارے میں. اپنی چچا نے، سگے چچا نے جو ہے نا فون چینج کر دیا، ملتا ہی نہیں تھا یہودیوں کو، ملتا ہی نہیں تھا رہتے ہوئے بیت المقدس کے اندر، کہ یار یہ بندہ ہے کون. اور بہترین انجینئر تھا، بہترین میزائل تو نہیں بنایا تھا اس نے، لیکن جو یہ ایکسپلوزو چھوٹے چھوٹے دھماکے ہوا کرتے تھے موٹر سائیکلس اور گاڑیوں کے ذریعے سے یہودیوں کے درمیان، وہ کرتا تھا. یحیی عیاش ایک شخصیت بس، منافق چچا اپنے، انہوں نے وہ فون اس کا تبدیل کر دیا. اس نے بیچارے نے بیل بجی، اس نے فون لگایا، بڑا دھماکہ ہو گیا اس فون کے اندر، اس کا برین جو ہے وہ نکل گیا. یحیی عیاش یعنی اپنی ہاتھ، اپنی لوگوں کے ہاتھوں. تو یہ تو حالت یہ ہو گئی تھی کہ سارے فلسطین بکنے کے لیے تیار تھا، بکنے کے لیے تیار تھا سارا ہی فلسطین، سوائے چند مستضعف جوانوں کے جو کہتے تھے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا علاقہ ہمارے ہاتھ سے لے کے ہمارے رشتہ دار جو 60 لاکھ کے قریب ہیں وہ باہر پڑے ہمارے ملک سے، یہ کیسے ہوگا، یعنی ہم کبھی بھی نہیں مل سکیں گے. اور جو ظلم ان کے اوپر ہوا 70 سال کے اندر، بہرحال وہ چند نوجوان آہستہ 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 حماس بن گئی، پھر جہاد اسلامی بن گئی، اور پھر انہوں نے بیت المقدس کی آزادی کا درس ایران سے لے لیا. انہوں نے دیکھا یار شیعہ تو بڑے سنجیدہ ہو گئے. اور شیعہ کیوں سنجیدہ ہوئے؟ آخری باتیں، شیعہ اس لیے سنجیدہ ہو گئے تھے کہ بھائی عالمی حکومت کا قیام اصل میں شیعوں کے ہاتھ وجود میں آنا ہے. وہ کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، وہ سوچ رہے ہیں ہم بنائیں گے یہودی حکومت دنیا کے اوپر، یعنی انسان کی حکومت. آپ نے کہا کہ نہ انسان کی نہ شیطان کی حکومت، تو رحمان کی ہے، اللہ کی بننی ہے، شیعوں کا یہ نظریہ ہے. آپ جو جدوجہد کر رہے ہیں، آپ کا نائب امام جو کوشش کر رہا ہے اس وقت، جو ولایت فقیہ کا نظام ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے نظام حکومت کے قیام کا مسئلہ ہے، اہل بیت علیہ السلام اور انبیاء کی خواہشات کا مسئلہ ہے کہ بھائی یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اس پر نظام بھی اللہ کا ہوگا. نہ اکنامی کسی اور کے ہاتھ میں جائے گی، نہ ایجوکیشن کسی اور کے ہاتھ میں جائے گی، نہ ہی کوئی اور چیز کسی کے ہاتھ میں جائے گی. آپ نے یہ بات کی ہے. خمینی نے اس کو اپنے الفاظ میں کیا کہا؟ کہا جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ کا جو علم اور جھنڈا میں نے بلند کیا ہے، یہ پوری دنیا پر لگ نہیں جائے گا نا، اس وقت تک ہمارا جہاد جاری رہے گا. یہ خمینی بلشکن نہیں کہہ رہا، خمینی کا جھنڈا لگاؤ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کا جھنڈا جب تک پوری دنیا پہ لگ نہیں جائے گا ہمارا جہاد جاری رہے گا. یہ کس کا نعرہ ہے بھائی؟ یہ انبیاء کا نعرہ ہے. کس کا نعرہ ہے؟ یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا نعرہ ہے. یہ کوشش آخری کس نے کرنی ہے؟ یہ آپ کا انشاءاللہ آخری امام اور حجت اللہ اور خدا کی آخری امید اور انشاءاللہ یعنی ہمارے لیے بقیت اللہ، کہ جن کے ذریعے سے یہ سب کچھ، بقیت اللہ کے جن کے ذریعے سے انشاءاللہ سارا نظام بہتر ہونا ہے، یہ سب ان کے ذریعے سے ہونا ہے. اب وہ یہ ان کے ذریعے سے ہونا اور وہی عالمی نظام عدل قائم ہونا ہے. اب وہ عالمی نظر قائم ہونے کے لیے آیا مجاہدین کی ضرورت ہے یا نہیں، افرادی قوت کی ضرورت ہے یا نہیں، دوسرا شعبہ. وہ یہ ہے کہ نہیں حکومت تو امام نے آنا ہے اور قائم کر دینا معجزے کے ذریعے سے. اللہ کے بندو معجزہ ہونا تھا تو یہ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں ہوا؟ امام حسین علیہ السلام کو اتنی زیادہ مظلومیت کے ساتھ شہید ہونے کی کیا ضرورت تھی اگر معجزے سے عالم حکومت قیام ہونا تھا؟ بابا آپ کو 11 ائمہ کی پریکٹس گزروایا صرف اس لیے گیا ہے کہ اپنے آپ کو خیال کرو, سمجھو, سنبھالو اپنے آپ کو, بہتر کرو. اور الحمدللہ آپ نے 11 ائمہ اور یہ 1000 سالہ ایک عبرت لی ہوئی ہے جس بنیاد پر آج پوری دنیا کے اندر تشیع قیام کے لیے تیار ہے. بڑی بات ہے, آپ صرف آنسو بہانے والے نہیں رہے, اب آپ جان دینے والے ہو گئے, اب آپ خون دینے والے ہو رہے ہیں اور اہداف کے مطابق خون دینے والے ہو رہے ہیں. وہ نہیں بغیر ہدف کے خون نہیں نکال رہے, اب آپ کو پتہ ہے ہدف کیا اور اب خون نکالنا ہے, یعنی خون دینا ہے. بہت بڑی بات ہے, آپ اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں, نہیں بلکہ اگلے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں پر اب الحمدللہ لوگوں پر خوف ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. سب سے بڑی بات تو حماس اور جہاد اسلامی فلسطینی جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے, دوائیاں نہیں ہیں, گھروں میں ان کے کچھ بھی نہیں ہے سر, ان لوگوں نے قیام کیا ہے تیسری مرتبہ. یہ جو انتفاضہ ہے اس کو انتفاضہ کہتے ہیں عربی میں, یعنی جب کوئی جدوجہد سیاسی شروع ہو اپنے پورے پاور کے ساتھ, پتھروں کی انتفاضہ ہو, یا یعنی اس کو آزادی کی جو تحریک اٹھتی ہے جو یہ طے کر لیتی ہے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے, یہ انتفاضہ عربی میں کہلاتی ہے. انتفاضہ کا قیام شروع ہوا ہے تیسری مرتبہ انشاءاللہ, دو مرتبہ منافقت کی وجہ سے دبا ہے, تیسری مرتبہ انشاءاللہ امید ہے کہ اب ایسا نہیں ہے. اب سارے فلسطینی نہ وہ اب اس کی بات محمود عباس کی بات مان رہے ہیں, نہ کسی اور منافق کی بات مان رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو انشاءاللہ اسماعیل حنیہ جیسے لوگ, ابو مرزوق, موسیٰ ابو مرزوق جیسے لوگوں کے حوالے کیا ہے, یا وہی زید نخلا جن کا وہ مشہور ہوا تھا نا بھی انڈے والا کہ میں تو انڈے بنا رہا ہوں, پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں سنا. جہاد اسلامی کا لیڈر ہے حماس کے مقابلہ نہیں کہیے, حماس کے ساتھ جو دوسری زیادہ مذہبی پارٹی ہے وہ جہاد اسلامی ہے. حماس تو پھر اخوان المسلمین کا ایک رول تھا نا, یہ جہاد اسلامی الحمدللہ یہ ذرا انقلابی بھی ہیں اور اس میں لیڈرشپ میں شیعہ اکثریت ہے. تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ جہاد کو اٹھا لیا, میزائل سیکھ لیے بنانا. ان کو میزائل کوئی اور پہنچا نہیں رہا ہے, پہنچا ہی نہیں سکتے آپ, آپ غزہ میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. غزہ کیا فلسطین میں داخل ہونا مشکل کام ہے, پورا فلسطین پورا غزہ جو ہے نا چاروں طرف سے اسرائیلیوں کے ہاتھ میں, چاروں طرف سے اسرائیلیوں کے ہاتھ میں. ایک طرف سے پانی ہے, صرف ایک رفا نامی چھوٹا سا علاقہ ہے بس, جو میں بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ جو آتا ہے مصر سے, صرف ایک چھوٹا سا خشکی کا راستہ ہے, اور اس کے اوپر بھی سیسی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ ہے آپ کو منافق ترین شخصیت جو مصر کے اندر مرسی کو ہٹا کے لائی, وہ بھی بہرحال بے وقوف آدمی تھا مرسی بھی, اس کے بعد پھر یہ سیسی کو لا کے بٹھا دیا گیا, تو ہمارا وہ رابطہ بھی کٹا ہوا ہے. ایسے وقتوں میں فلسطینیوں نے قیام کیا ہے, پہلے بھی شہید ہو رہے تھے. اگر آپ ہی سمجھتے ہیں کہ ایک ساتھ انہوں نے ابھی ہی 40-50 شہید دے دیے دو راتوں میں تین راتوں میں, تو بھائی ایسی بات نہیں ہے. یہ شہادتیں بیچارے روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایک کر کے دے رہے تھے, ایک ایک کر کے, اور ان سے ایک ایک کر کے ان کے گھر چھینے جا رہے تھے. اگر آپ نے آخری ویڈیو دیکھی ہو جو نیا علاقہ فلسطینیوں سے خالی کرا کے اور یہودیوں کو لا کے بسایا گیا ہے, وہاں کی ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ جب وہ گھر چھوڑ رہے ہیں اپنا فلسطینی, تو وہ یہودی جو فیملی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں تو اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم آپ کے گھر میں آئیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں آئیں گے, کوئی اور آ جائے گا, اس لیے ہمیں تو آنا ہی ہے, ہماری باری لگی ہوئی تھی کہ آپ نے اس باری کے اوپر جو ہے وہ اس جگہ پر آنا ہے. تو وہ درود پڑھ دیں گے محمد والے اب انہوں نے انتفاضہ قیام الحمدللہ, اور وہ اس قدر کامیاب قیام ہے. جب کوئی قوم جان دیکھنا سیکھ لینا, جان دینا, یعنی اب ان کو وہ جیلوں کا اور وہ اسیری اور یہ سب تو ختم ہو گیا نا, زخمی, اب تو یہ جانے دے رہے ہیں. انہوں نے کہا اب جو ہونا ہے ہو, آخری مارکے کے طور پہ آگے بڑھ رہے ہیں, یعنی تھک گئے نا جنازے اٹھا اٹھا کے, ایک ہی کر کے جنازے اٹھا اٹھا کے پورے فلسطین کے اندر تھک گئے. اب انہوں نے کہا جو ہونا ہے ہو جائے, ہم تو میدان میں آ گئے. ہوا یہ کہ وہ مسجد اقصیٰ کو ایک بار پھر انہوں نے قبضے میں لینے کی کوشش کی اور کہا کہ بس یہ عبادت کرو, شب جمعے کی جو رات کی آخری عبادت ہے بس یہ کرو, کیونکہ جمعۃ الوداع کا دن اور رات گزارنا مسجد اقصیٰ کے اندر اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اہل سنت دنیا میں. تو وہ وہاں پر اپنے آخری اعمال انجام دے رہے تھے کہ ان کے اوپر جو حملہ ہو جاتا ہے, حملہ ہوتا ہے تو بپھر جاتے ہیں, بپھرتے ہیں تو پھر وہ الحمدللہ انتفاضہ شروع ہو جاتی ہے. اور پھر اگلے دن وہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ کم ہو جائیں گے, الگ الٹا ہو گیا, ہفتے کے دن اور زیادہ مجمع جمع ہو جاتا ہے. پھر یہ سمجھ رہے تھے خالی یہیں کے مقامی لوگ ہیں, پھر یہ مظاہرے جہاں پورے فلسطین میں اٹھ جاتے ہیں, اور الحمدللہ اب صرف فلسطین میں نہیں اٹھ رہے, اب یہ پوری اسلامی دنیا میں مظاہرے ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو جہاں اسرائیل کو آہستہ آہستہ انہوں نے اس کا چہرہ صاف کروا کے پوری دنیا سے اس کو ایک ملک کے طور پہ قبول کروانا, اور یونائیٹڈ نیشن نے حصہ بنایا ہوا ایک ملک کے طور پہ ڈکلیئر تھا, دو چار ملک رہ گئے تھے بس, بقیہ سب نے اس کو ایز اے ملک تسلیم کر لیا تھا. اس میں الحمدللہ پاکستان بھی, اس میں ایران بھی ہے جنہوں نے نہیں کیا تھا. سعودی عربیہ اور عرب امارات پہلے کر چکے تھے, اب اوپن ہو گئے, खुल गया कि हमने भी इसको जो एक मुल्क ऐसे तस्लीम कर लिया है। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक मुल्क के तौर पर मनवा लिया है और अपनी ताकत के बलबूते पे सारे मुसलमान ममालिक को ख़रीद लिया है और अब वो चाह रहे थे कि अब हमारे अलावा और कोई नहीं होगा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अब हमारी वो आलमी हुकूमत जो है वह आहिस्ता से जा रही है। रह गया ईरान का मसला, तो ईरान अपने न्यूक्लियर की वजह से जो दाखिली इख्तलाफात का शिकार हुआ हुआ था वो और बढ़ेगा, अभी जो इलेक्शन आएंगे इसमें और, यानी दो हिस्सों में ईरान मुल्क की हैसियत से नहीं, किसी मज़हब की बुनियाद पर नहीं, किसी सियासी पार्टी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि यही जो सदारती इलेक्शन होते हैं ना इस बुनियाद पर दो हिस्सों में तकसीम होने का इम्कान है। रहबर मौज़म नहीं रोका हुआ अब तक, अगर रोका हुआ है इसको दो मुल्कों में ना होने दें, यानी दो हिस्सों में आवाम को ना बंटने दें। तो रहबर कहते हैं कि जिसको भी लोग अक्सरियत की बुनियाद पर ले आते हैं हम उसका साथ देंगे, चाहे वो रूहानी हो, चाहे उससे पहले अहमद निजात हो, चाहे खातमी हो, चाहे रफ्सनजानी हो, हम तो साथ दे ही रहे हैं। तो अभी लेकिन इस दफ़ा जो ज़रीफ़ साहब ने हरकतें की हैं, पूरी कोशिश है कि ईरान को किस तरह अंदर से तोड़ दें, क्योंकि ईरान को अगर जैसे आपने सही तरह से इमाम खुमैनी की वजह से हाथ जड़ पर रख दिया है ना कि भाई जड़ को ख़त्म करो, असल में आपने बनी इसराइल जो कुरान इतना इशारा करता रहा है, असल में यही बनी इसराइल हैं, इनको आपने जड़ से उखाड़ना है, दुनिया में फसाद और फितना ख़त्म होगा ही होगा। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने भी जड़ पे हाथ रख दिया है, उन्होंने कहा यार हम समझ रहे थे कि ये पावर और तुर्की और कोई ईसाई उठ जाएगा और कहीं अहले सुन्नत, कहीं देवबंदी, कहीं अहले हदीस, कहीं कुछ भी नहीं है, कोई सलफ़ी भी कोई भी नहीं है, असल मसला शियों का, इसलिए उन्होंने भी जो है वो फोकस सारा इस्लाम अब आहिस्ता आहिस्ता ईरान को करना शुरू किया है। क्या ईरान को, हम यमन में क्यों नाकाम हो रहे हैं ईरान की वजह से, हम जो हैं वो फ़लस्तीन अपना शाम पे क्यों नहीं कब्ज़ा कर पाए ईरान की वजह से, हम जो हैं वो और बकिया मुल्कों में जहाँ हमने उठाया है फसाद, ईरान जहाँ नहीं आया वहाँ तो कर लिया, जैसे लीबिया, अब लीबिया में अगर ईरान नहीं गया है या दूसरे लफ्ज़ों में ईरान ने वहाँ पर अभी तक जो है वो कदम नहीं रखा है, अपना प्लान वहाँ शुरू नहीं किया, जो होगा इंशाल्लाह नहीं किया है, तो आपको लगा कि जैसे आपने अपनी मर्ज़ी का काम कर दिया, लीबिया को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया, आपके सामने लीबिया की क्या हैसियत है दुनिया के अंदर कज़ाफ़ी के जाने के बाद से, तो उसको तो दो तीन हिस्सों में तकसीम कर ही देंगे, यानी एज ए मुल्क दो तीन हिस्से बना देंगे उसके, लेकिन इराक़ में नहीं कर पाए क्योंकि ईरान था, शाम में नहीं कर पाए ईरान था, लेबनान में नहीं कर पाए ईरान था, बहरीन में नहीं कर पा रहे, छोटा सा जजीरा है 7-8 लाख लोगों पर मुश्तमिल मुल्क जजीरे की सूरत में नहीं कर पा रहे, वहाँ पर है शहीद अलहमदिल्ला, यमन में नहीं कर पा रहे अलहमदिल्ला है, अफगानिस्तान में भी कामयाब नहीं होंगे, मुतमिन हो जाइए नहीं होंगे, कामयाब नहीं हो सकते, जहाँ के लोग अपनी मुश्किलात में होने के बावजूद भी आज़ादी शाम या जनाब ज़ैनब के हरम के दिफा के लिए नौजवान वहाँ से जाना शुरू कर दें और फातमियून बन जाए, भाई ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने मसाइल के साथ साथ आपको ये बात पता हो कि मेरे मसाइल हैं, लेकिन ये देखना होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट मसाला कौन सा है, अपने मसाइल हैं लेकिन अहम मसाला कौन सा है। सर ये जो कौमें होती हैं ना जो इस तरह सोच लेती हैं, ये आपको पता है यमनी सोचते हैं इस तरह से, अगर आपको यकीन नहीं आता बैतुलमक़दस का मुजाहरा जो इस दफ़ा हुआ है, बैतुलमक़दस का मुजाहरा उसको आप देखिए तो आपको पता चलेगा, बैतुलमक़दस के मुजाहरे को देख के क्या मौत ले इसराइल के नारा यमनी लगा रहा है और वो हैरान हो रहा है इसराइल के, यानी ये तो बात समझ में आती है कि फ़लस्तीनी कह मौत ले इसराइल या लेबनानी कह मौत ले इसराइल, ये यमनी क्यों कह रहे हैं, तो पता चला भाई यमनियों ने भी इस बात को समझ लिया है कि हमारे यहाँ तुम मुश्किलात की असल वजह तुम ही हो, तुमने आलमी हुकूमत के क़याम के चक्कर में कोशिश की हुई है कि किसी भी तरीके से जहाँ से भी इमामी ज़माना की फ़ौजों को जमा होना है उन इलाकों को कमज़ोर करो। ये यमनियों का अपना इंटरव्यू है जिसका मैंने नाम भी लिया, हसन इमाद नामी शख्सियत है जो जस्टिस पार्टी के लीडर हैं, जिनका काम सिर्फ फिक्री नज़रियाती तरबियत करना है फ़लस्तीनी जवानों की, यमनी जवानों की, और ये यमनी है ख़ुद, इन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर ये बात लिखी हुई है कि वो इसलिए इन इलाकों पर हमला कर रहे हैं कि उनको बात पता है कि इमाम के ज़माना के लिए इंशाल्लाह दो ही बाजू हैं, एक बाजू जो है इसको आप कहते हैं ईरान जहाँ से खुरासान की फ़ौजें निकलनी हैं इंशाल्लाह, और एक बाजू जो है यमन कि जहाँ से इंशाल्लाह यमनी निकलना है, हज़रत यमनी का इंशाल्लाह क़याम होना है। वो कहते हैं हमें इस बात की सज़ा मिल रही है भाई कि हमने इमाम की फ़ौज का हिस्सा बनना है, वो देखें संजीदा समझे बैठे हैं और आपका दुश्मन भी इस बात को समझे बैठा है। बहरहाल ये आखिरी मारका है इंशाल्लाह, ये नहीं कह रहा कि इमाम का ज़हूर हो जाएगा, हमें नहीं मालूम इमाम का ज़हूर कब होगा, लेकिन हमें ये बात पता है कि ये सारे इशारे हैं कि भाई तैयारी बड़ी अच्छी सतह की रखें, सोच बड़ी अच्छी सतह की रखें, काम बड़ी अच्छी सतह की करने की बातें करें, क्योंकि आप जो हैं वो एक बहुत ही बड़े और अच्छे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ जो कुछ मुल्क में होता है, जो कुछ अफगानिस्तान में हो जाता है, ये ईरान में भी होता रहा है, इराक़ में भी होता रहा है, हो रहा है, ये लेबनानियों के साथ बेचारे इससे ज़्यादा बुरा हुआ है, आपको पता नहीं है, अभी आपके साथ कुछ भी नहीं हुआ कि जो दुनिया के अंदर शियों के साथ या उन्होंने इम्तहान दिए हैं, बहुत सख्त इम्तहान दिए हैं, लेकिन अपने आप को मजबूत रखें इंशाल्लाह, अपने हौसले बुलंद रखें इंशाल्लाह, इमाम से अपने रबते को बरकरार रखें। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अज़्म और हौसले का साल और ये आपकी अगले मरहले में दाखिल होने का साल इंशाल्लाह। दुरूद पढ़ दें।